नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत यूक्रेन रूस संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि भारत इस संबंध में हर संभव योगदान देगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ टेलीफोन पर बातचीत में प्रधानमंत्री ने संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर बल दिया। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने हाल के घटनाक्रमों पर भी श्री जेलेंस्की से बात की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की शुक्रवार को अलास्का में होने वाली वार्ता से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से यह बातचीत की है। यह वार्ता यूक्रेन में संघर्ष विराम पर बातचीत के लिए हो रही है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में बैठक की घोषणा की थी। रूस के एक प्रवक्ता ने भी इसकी पुष्टि की है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
भारत ने संभावित परमाणु धमकी पर पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर की टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में कहा है कि भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि वो किसी भी परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भारत के सभी आवश्यक कदम जारी रहेंगे। बयान में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इन टिप्पणियों में निहित गैर जिम्मेदारी पर, विशेष रूप से पाकिस्तानी सेना के आतंकवादी समूहों के साथ घनिष्ठ संबंधों को देखते हुए अपने निष्कर्ष निकालने की भी चेतावनी दी गई है। लोकसभा ने कराधान विधि संशोधन विधेयक 2025 और आयकर संख्या 2 विधेयक 2025 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया और अन्य मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच ये विधेयक पेश किए। सरकार ने पिछले 10 वर्षों में आयकर कानून में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इनमें कॉरपोरेट कर सुधार, व्यक्तिगत आयकर सुधार, पूंजीगत लाभ के कराधान में सुधार और ट्रस्ट प्रावधानों की 2 व्यवस्थाओं का विलय आदि शामिल हैं। इसके अलावा कर प्रशासन को अधिक कुशल, पारदर्शी और करदाता अनुकूल भी बनाया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अगर जैव ईंधन और हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के साथ उसका उपयोग भी बढ़ाया जाए तो भारत एक ऊर्जा निर्यातक देश बन सकता है। श्री गडकरी कल विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर पुणे में बायोवर्स पहल के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जैव ईंधन क्रांति आयात कम करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। श्री गडकरी ने कहा कि चीनी उद्योग को इथेनॉल, जैव ईंधन और हरित हाइड्रोजन पर अधिक ध्यान देना चाहिए। आधार चेहरा प्रमाणीकरण प्रणाली ने 10 अगस्त 2025 तक 2 अरब लेनदेन का आंकड़ा पार कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। केवल 6 महीनों में लेनदेन की संख्या 1 अरब से 2 गुनी हो गई है। इस उपलब्धि के बारे में प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश कुमार ने कहा कि इतने कम समय में 2 अरब आधार चेहरा प्रमाणीकरण लेनदेन तक पहुंचना आधार के सुरक्षित, समावेशी और नवीन प्रमाणीकरण व्यवस्था में लोगों का विश्वास दिखाई देता है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज श्रीनगर के शेरे कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र से बोटैनिकल गार्डन तक तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुबह करीब 7 बजे डल झील के किनारे स्थित शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर से पर्यटन स्थल बॉटनिकल गार्डन तक तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। स्कूली बच्चों, युवाओं, सरकारी अधिकारियों और समाज के हर वर्ग के पुरुषों और महिलाओं सहित हजारों की संख्या में लोग हाथों में तिरंगा लिए इस तिरंगा यात्रा का हिस्सा थे। महोत्सव में देशभक्ति का गुणगान करने वाले तिरंगा संगीत कार्यक्रम भी शामिल हैं। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के शहीदों पर एक मोनोग्राफ का विमोचन भी किया जाएगा। तारिक रातर, आकाशवाणी समाचार, श्रीनगर।
मौसम विभाग ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अगले 7 दिनों के दौरान बहुत तेज बारिश की आशंका व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अलग अलग स्थानों पर तेज हवाओं के साथ गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तड़के बारिश हुई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।